अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज इसके अंतर्गत हम ईश्वर से संवाद शीर्षक की धारा में अंतिम कड़ी के रूप में भगवान बाबा और उनके विद्यार्थियों तथा कुछ विशिष्ट भक्तगणों के मध्य हुए वार्तालाप की झलकियां प्रस्तुत करेंगे। इनकी प्रस्तुति नाटक के रूप में राजस्थान के युवा भक्तवृंद एवं बाल विकास के बच्चों द्वारा प्रशांति निलयम में भगवान बाबा की अलौकिक उपस्थिति में 29 दिसंबर सन 2018 को की गई थी।
चलो अब एक और ईश्वर और मनुष्य के मधुर संवाद के अमृत का पान करते हैं। अब यहां मेरी समस्या यह है कि उनके असंख्य प्रसंग हैं। मैं कौन से संवाद को बताऊं और किसको छोड़ूं?
पहले आप ये बताइए कि आप किसके मध्य संवाद की बात कर रहे हैं।
अरे सिद्धार्थ, मैं पूर्ण अवतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा और उनके विद्यार्थियों के बीच संवाद की बात कर रहा हूँ। तुम तो जानते हो कि भगवान का संवाद उनके विद्यार्थियों के साथ कितना विशिष्ट और आनंदमय होता है। इसकी कल्पना करना भी आम इंसान के लिए असंभव है। अक्टूबर 2008 की घटना है। बाबा की यूनिवर्सिटी के एक एमबीए के विद्यार्थी के माता पिता का दबाव था कि वो अमेरिका पढ़ने जाएं, और उसका इमिग्रेशन और वीजा भी समाप्त हो रहा था।
अच्छा, फिर क्या हुआ?
बाबा, मेरे माता पिता का बहुत दबाव है कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाऊं, लेकिन मैं इस एमबीए कोर्स को छोड़कर आपसे दूर अमेरिका नहीं जाना चाहता। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं?
अगर तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें चटनी नहीं मिलेगी।
शशांक, बाबा ने तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दिया?
मैं भी समझ नहीं पाया। बाबा ने कहा कि अगर तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें चटनी नहीं मिलेगी, इसका क्या मतलब है?
एक बार बाबा ने हमें नाश्ते पर बुलाया और हमसे पूछा कि बताओ इडली और चटनी में भगवान कौन है और संसार कौन है। पता है हम सब ने स्वामी से कहा, बाबा क्योंकि इडली बड़ी होती है इसलिए वह भगवान है और चटनी संसार है।
तो फिर क्या हुआ?
फिर क्या होना था? भगवान बाबा ने हमसे कहा कि बिना चटनी के इडली का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए चटनी भगवान है और इडली संसार है। शशांक, मुझे आशा है कि अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
हे भगवान, क्या तरीका है भगवान के उत्तर देने का? भगवान ने मुझे कहा कि अगर मैं अमेरिका गया तो चटनी नहीं मिलेगी, मतलब अगर मैं अमेरिका गया तो मुझे ईश्वर के साथ निकटता नहीं मिलेगी।
अद्भुत तरीका है स्वामी का हम सब से संवाद करने का।
हाँ, मुझे एक और घटना याद आती है जो यहीं पर घटी थी। दो एमबीए के विद्यार्थी अपने परिणाम से पहले दर्शन करने मंदिर में बैठे थे।
कल तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, देखना तुम इस बार गोल्ड मेडल के साथ पास होगे।
स्वामी, ये कैसे संभव है? मुझे तो अपने पास होने की आशा भी नहीं है।
कल तुम्हारे एमबीए का रिजल्ट आ रहा है, देखना तुम इस बार पास भी नहीं होगे।
अगले दिन परिणाम आता है और प्रथम विद्यार्थी फेल होता है, दूसरे को गोल्ड मेडल मिलता है।
बाबा, ये क्या? आपने तो कहा था कि मुझे एमबीए में गोल्ड मेडल आएगा, लेकिन मैं तो फेल हो गया।
ये एमबीए का मतलब क्या होता है?
स्वामी, एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
नहीं बंगारू, एमबीए का मतलब होता है माइंड ऑन बाबा ऑलवेज। इस एमबीए में तुम मेरे लिहाज से गोल्ड मेडलिस्ट हो, और वो दूसरा विद्यार्थी जिसको गोल्ड मेडल मिला है वो मेरे हिसाब से एमबीए की इस डिग्री में फेल है।
इस प्रकार का अद्भुत संवाद भगवान बाबा के साथ बिताए हर पल को अद्भुत एवं आनंदमय बना देता है।
कुछ और बताइए ना, बहुत ही आनंद आ रहा है।
कितना बताऊं आप सबको, हरि अनंत हरि कथा अनंता। खैर, अब अंत में देखो भगवान डॉक्टर से कैसे संवाद स्थापित करते हैं। तुमने डॉक्टर वी मोहन, जो दुनिया के विख्यात डायबिटीज के डॉक्टर हैं, का नाम तो अवश्य सुना होगा, और इसके अलावा एम्स के डायरेक्टर एवं प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वेणुगोपाल, जो भगवान बाबा के अनन्य भक्त हैं।
हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से सुना है।
एक बार भगवान बाबा ने उन्हें इंटरव्यू के लिए अपने इंटरव्यू रूम में बुलाया।
डॉक्टर मोहन, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे देश में डायबिटीज रोग के बढ़ने का क्या कारण है?
भारतीयों में कुछ विशेष जीन्स के कारण ऐसा है।
लेकिन ये सभी जीन्स तो 40 साल पहले भी थे, फिर क्यों डायबिटीज के रोगी 40 साल पहले कम थे और अब बढ़ गए हैं?
स्वामी, लोग पहले ज्यादा एक्सरसाइज करते थे और मेहनत करते थे, जो अब नहीं कर रहे हैं।
ये ठीक है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं।
स्वामी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, कृपया आप ही मुझे बतलाइए।
यह सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम एक वैज्ञानिक हो और तुम इस पर रिसर्च भी कर रहे हो। तुम्हारे पास डाटा है, लेकिन तुमने उसको इस दृष्टिकोण के साथ एनालाइज नहीं किया है। भारत में डायबिटीज रोग के बढ़ने का कारण सफ़ेद चावल को अधिक मात्रा में खाने के कारण है। डॉक्टर वेणुगोपाल, तुम बताओ भारत में हृदय रोग बढ़ने के क्या कारण है?
बाबा, ये मुख्यतः भोजन में ज़्यादा वसा खाने, कम कसरत करने और अधिक चिंता करने के कारण होता है।
डॉक्टर, इसे हम बहुत ही सरल भाषा में समझ सकते हैं, हरी वरी एंड करी, अर्थात जल्दबाजी, चिंता एवं करी अर्थात जरूरत से अधिक तेल युक्त भोजन करना।
बाबा, मेरे 30 वर्षों के कैरियर में इससे अधिक सरल एवं सटीक हृदय रोग के कारण की व्याख्या मैंने किसी से भी नहीं सुनी।
हम लोगों ने डायबिटीज पर काफी रिसर्च किया है, लेकिन बाबा ने जैसा कहा, मैं चाहता हूँ कि हमें भोजन में सफेद चावल खाने की मात्रा एवं डायबिटीज रोग के मध्य संबंध पर अपने रिसर्च डाटा को वापस स्टडी करें।
सर, हमने डाटा को स्टडी करके ये पाया है कि जो लोग प्रतिदिन 400 ग्राम सफ़ेद चावल खाते हैं, उनमें डायबिटीज होने की संभावना 4 गुना अधिक होती है। यानी कि बाबा ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है।
क्या तुमने डॉक्टर मोहन का नया रिसर्च आर्टिकल, जो कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित हुआ है, उसे पढ़ा? उन्होंने बताया कि भारत में सफेद चावल का ज्यादा खाना डायबिटीज होने का मुख्य कारण है। इस आर्टिकल से डॉक्टर मोहन का नाम और ख्याति पूरी दुनिया में हो गई है।
तो इस प्रकार भगवान बाबा के पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसान, जज, वकील, खिलाड़ी या राजनेता हो, सभी से विशिष्ट संवाद स्थापित करते हैं और सभी को एक नई दिशा एवं ज्ञान प्राप्त होता है। चलो अब हम सत्संग समाप्त करते हैं।
बहुत ही सुंदर और आनंदमय था आज का दिन। कितना समय गुजर गया, समय का तो पता ही नहीं चला।
लेकिन मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है, अगर आप अनुमति दें तो पूछो।
हाँ हाँ, जरूर पूछो। किसी भी विषय पर कोई संदेह मन में नहीं रखना चाहिए।
जितनी भी चर्चा अब तक हुई, वहां पर संवाद एक भौतिक रूप से उपस्थित ईश्वर और मनुष्य के बीच था, लेकिन ईश्वर अवतार के रूप में हमारे बीच ना हो तो उसके साथ संवाद का आनंद कैसे लिया जा सकता है?
तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उपयुक्त एवं प्रासंगिक है। इस प्रश्न से मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। देखो, दो तरीके हैं। पहला है प्रार्थना और ध्यान। जब हम अपने हृदय के गहनतम तल से प्रार्थना करते हैं तो हमारी आवाज ईश्वर तक पहुंचती है, और ध्यान में जब हम अपने मन के विचारों पर नियंत्रण करते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज अपने अंदर सुनाई देती है। यह अंतरात्मा और कुछ नहीं, हमारे हृदय में विराजित हमारे साई की आवाज है। बाबा ने कहा भी है, इट इज ओनली इन द डेप्थ ऑफ साइलेंस द वॉइस ऑफ गॉड इज हर्ड। शांति की गहराइयों में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। दूसरा तरीका है भजन। भजन से हमारा ईश्वर के साथ साक्षात्कार होता है, जिससे हम ईश्वर के साथ संवाद करते हैं। आओ हम सब मिलकर उनके साथ संवाद स्थापित करें।
ईश्वर से संवाद करो, कभी तो जाप करो, ईश्वर से संवाद करो, कभी तो वार्तालाप करो, जाप करो, ध्यान करो, नाम स्मरण और भजन करो, जाप करो, ध्यान करो, नाम स्मरण और भजन करो, सेवा करो, श्रवण करो, भगवत लीला गान करो, सेवा करो, श्रवण करो, भगवत लीला गान करो, ईश्वर से संवाद करो, कभी तो वार्तालाप करो, ईश्वर से संवाद करो, कभी तो वार्तालाप करो। ये सब रास्ते एक ही है, ईश्वर तक ले जाएंगे, कोई भी रास्ता चुन लो भाई, मंजिल एक ही पाएंगे। ये सब रास्ते एक ही है, ईश्वर तक ले जाएंगे, कोई भी रास्ता चुन लो भाई, मंजिल एक ही पाएंगे। सबकी मंजिल एक ही है, सब ईश्वर को प्राप्त करो, सबकी मंजिल एक ही है, सब ईश्वर को प्राप्त करो, ईश्वर से संवाद करो, कभी तो वार्तालाप करो, ईश्वर से संवाद करो, कभी तो वार्तालाप करो।
अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद भवन। ईश्वर से संवाद के संदर्भ में आज एक नाटिका से कुछ अंश यहां प्रस्तुत किए गए थे।